नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इसे सुंदरकांड क्यों, इसके विषय में हमने चर्चा की। हालांकि प्रभु श्री राम और सीता, इनके विषय में इस कांड में वर्णन है, परंतु हनुमान जी ये प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे कांड में, और वो प्रभु श्री राम और सीता का मिलन कराते हैं। और जैसे कल हमने चर्चा की कि राम और सीता जब वो एक साथ होते हैं तब उनकी वास्तविक सुंदरता देखने मिलती है, और जो व्यक्ति इनका मिलन करा रहे हैं उनको उल्लेख कर कर है ये सुंदरकांड। हनुमान जी जिन्हें आचार्य कहा गया है, जिन्हें गुरु कहा गया है, और सीता देवी जो वो मंत्र हैं जो गुरु देते हैं, और प्रभु श्री राम उन मंत्र का अर्थ है, तो हनुमान जी अपने उदाहरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं, विशेष रूप से सुंदरकांड में, कि एक साधक को अपनी साधना कैसी करनी चाहिए। तो सुंदरकांड में सबसे प्रमुख जो प्रसंग है वो है हनुमान जी जब लंका जाते हैं, और हनुमान जी ने जो छलांग लगाई 100 योजन पूरे समुद्र को पार किया और हनुमान जी लंका पहुंचे। तो आज हम चर्चा करेंगे हनुमान जी की जो यात्रा थी, यात्रा में क्या कुछ हुआ, और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो हम प्रसंग वहां से शुरू करते हैं जब सुग्रीव, उन्होंने अपने जो पार्षद हैं वानर पार्षद, उन्हें अलग अलग गुट बनाकर चारों दिशाओं में भेजा सीता की खोज करने के लिए, और उनमें से एक गुट था जिनके प्रमुख थे अंगद और जांबवान, और ये गए दक्षिण दिशा, और वहां पर उनकी भेंट होती है जटायु के भाई से। कोई जानता है उनका क्या नाम था? संपाति। और संपाति ये सूचना देते हैं अंगद और जांबवान को कि सीता को रावण हर ले गया है और वो समुद्र के उस पार है लंका में। तो अब वो समुद्र के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर अब विचार विमर्श कर रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो अंगद सबसे पूछते हैं कि कौन कितनी छलांग लगा सकता है। तो पहले तो उन्हें पता लग गया संपाति के द्वारा कि ये समुद्र जो है 100 योजन है, 100 योजन 800 मील होता है, तो इतना लंबा चौड़ा ये समुद्र, इसे पार कर पाना, और ये केवल कुछ वानर, कभी हमने सुना नहीं समुद्र के तट पर सबसे पहले वानर हैं, और वो भी अब प्रयास कर रहे हैं इस समुद्र को लांघ कर जाने का, तो कभी ये इतिहास में देखा सुना नहीं गया। तो अंगद अभी अपने गुट के सारे वानरों को पूछते हैं, तो एक कहता है मैं केवल 5 योजन कूद सकता हूं। एक वानर कहता है मैं 10 योजन, एक कहता है मैं 20 योजन, एक वानर कहता है 30, 40, 50। फिर मैंद ये कहते हैं कि मैं 60 योजन कूद सकता हूं। द्विविड ये कहते हैं कि मैं 70 योजन कूद सकता हूं। तो अंगद जांबवान से पूछते हैं कि आप सबसे वरिष्ठ हैं, तो आप बताइए आप कितना कूद सकते हैं। तो जांबवान कहते हैं कि मैं जब युवावस्था में था तो मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया था 21 बार। ये समुद्र तो कुछ नहीं है, परंतु क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं तो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, तो मैं 90 योजन कूद सकता हूं। तो समस्या फिर भी बनी रही, ये तो 100 योजन है। तो सभी अंगद की तरफ देख रहे हैं कि अंगद आप सबसे पूछ रहे हैं, हम सब में आप सबसे शक्तिशाली हैं। तो अंगद कहते हैं कि मेरे अंदर शक्ति तो है 100 योजन कूदने की, परंतु मैं फिर से नहीं आ सकता, केवल वन वे, फिर से मैं नहीं आ पाऊंगा, इतनी शक्ति नहीं है। फिर से आने का अर्थ क्या है, और एक 100 योजन, तो 200 योजन कूदना होगा। तो अब कौन भाई ये कार्य करेगा? तो जांबवान वो सबसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कौन ये कार्य कर सकेगा, और वो है हनुमान जी। और तब तक हनुमान जी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, कोई पूछ भी नहीं रहा था उन्हें, क्योंकि केवल जांबवान जानते थे कि बचपन में हनुमान जी जिनके अंदर इतनी शक्ति है, उन्हें सभी देवताओं ने एक प्रकार का श्राप दिया था कि ये सारी शक्तियां वो भूल जाएंगे। और उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि वो इतिहास क्यों ऐसा हुआ। तो ये श्राप मिला था कि सारी शक्तियों को वो भूल जाएंगे अपनी, परंतु जब कोई व्यक्ति याद दिलाएगा उन्हें तो फिर से वो पूरी शक्तियां उनके अंदर आ जाएंगी याद दिलाने पर। तो जांबवान अब क्या करने वाले थे, केवल हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने वाले थे। तो जांबवान उस गुरु के समान हैं और हनुमान जी इनके सामने उस साधक के समान हैं कि जिसके अंदर सब शक्तियां हैं भगवान को प्राप्त करने की। हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में प्रकृति ने, भगवान ने सारी योजना बनाकर दिए हैं भगवत प्राप्ति की। हमारा जो शरीर है वास्तविक रूप में भगवान की सेवा के लिए ही बनाया गया है, परंतु जब इसे उस सेवा को छोड़ केवल इंद्रिय भोग में लगाया जाता है तब व्यक्ति दुखी होता है। तो यदि हर एक अंग हमारे शरीर का हम लें, हर एक भाग, हमारा मन, बुद्धि, यहां तक कि जो अहंकार है उसे भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो ये सब कुछ जो है, ये सृष्टि ने विशेष रूप से, ये जो मनुष्य देह हमें मिला है विशेष रूप से सृष्टि ने इस प्रकार से रचा है ये मनुष्य देह कि हमें भगवत साक्षात्कार हो। और शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि यदि हम अपना शरीर लें तो हमारे शरीर में, हमारा शरीर बहुत कोमल है पशुओं के शरीर की तुलना में, बहुत कोमल है ये शरीर अपना। जैसे आजकल ये नासिक में इतने मच्छर दिखते हैं, तो देखिए बाकी जो पशु हैं वो आराम से घूम रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं मच्छरों की, कोई ओडोमॉस नहीं लगा रहा, कोई वो क्या कहते हैं कछुआ छाप नहीं जला रहा, कोई मच्छरदानी में नहीं सो रहा। परंतु हम मनुष्य को देखिए, एक मच्छर मनुष्यों को मार सकता है, पीड़ा देने तो दूर की बात है, मनुष्य मर सकता है ये छोटे से मच्छर के कारण। तो हमारा ये जो शरीर है इसके अंदर दुख को समझने की चेतना दी है हमें, इसीलिए ज्यादा दुखी होते हैं। जो पशु होते हैं उनके भी शरीर में दुख होता है, परंतु उनके अंदर इतनी चेतना नहीं कि वो समझ पाए कि मेरा पैर दुख रहा है या मेरा सर दुख रहा है। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि यदि किसी पशु परिवार में, किसी कुत्ते के परिवार में यदि कुत्ते का सर दर्द कर रहा है तो दूसरा उसका सर दबा रहा है, तो थोड़ा बाम लगाकर सर दबाएं। अरे वो कुत्ते को खुद को पता नहीं मेरा सर कहां पर है, केवल कुछ तो दर्द कर रहा है, तो कुत्ता क्या करता है, खाली भौंकता है, भागता है, ये सब कुछ करता है। हमारे डॉक्टर साहब यहां पर हैं पशुओं के, पशुओं को दर्द होता है तो क्या करते हैं, आपके पास आते हैं हाँ? नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ पता लगता है क्या, उसे पता है कि हमारे अद्वैत प्रिया प्रभु यहां पर हैं डॉक्टर, तो चलो इनके पास जाया जाए। कुछ चेतना नहीं उनके अंदर, केवल उसे सहन करते हैं उस दर्द को। तो देखिए ये जो चेतना हमारे मनुष्य शरीर में है दुख को जानने की, ये चेतना क्यों दी गई है, ताकि उस चेतना से हम उसका निवारण करें, और केवल निवारण ही न करें बल्कि उस दुख से ऊपर उठें। यदि हमें उस प्रकार की चेतना नहीं दी होती तो हम कभी भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि भौतिक संसार दुख का संसार है, और इसे समझने के लिए ये शरीर बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये शरीर हमें बताता है हर क्षण कि ये केवल दुख देने के लिए दिया गया है। तो इस शरीर में सब कुछ प्रकृति ने दिया है भगवत प्राप्ति के साधन, और गुरु होते हैं वो याद दिलाते हैं हमें, गुरु याद दिलाते हैं कि ये सब कुछ साधन है आपके अंदर इस मनुष्य शरीर में भगवान को प्राप्त करने का। जैसे जाम भगवान याद दिला रहे हैं हनुमान जी को कैसे सीता को खोजा जाए, भक्ति को खोजा जाए। तो जैसे ही हनुमान जी, अब उन्हें याद आ जाता है उनकी सारी शक्तियां, तो तुरंत हनुमान जी अब वो कोई साधारण वानर नहीं रहे, और बाकी सारे वानर अब हनुमान जी की तरफ देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि केवल याद दिलाने मात्र से ये बिल्कुल अलग हो गए। तो जैसे हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आते हैं तो दूसरा व्यक्ति जब हमें देखता है तो ये कहता है बहुत अलग हो गया तुम, पहले की तरह नहीं रहे। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा बोलचाल, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग हो गया। तो तुरंत वो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति पहले का जैसा नहीं रहा, क्योंकि क्या हुआ है, केवल हमें शास्त्रों ने क्या किया, याद दिलाया है। याद किसे दिलाया जाता है, जो भूल जाता है। तो कृष्ण भावनामृत कुछ बाहर से डाली नहीं गई हमारे अंदर, पहले से हमारे अंदर है, केवल शास्त्र हमें याद दिलाते। जैसे हनुमान जी को जांबवान ने याद दिलाया, तो बस याद दिला दिया और अब देखते हैं हनुमान जी के अंदर बदलाव। तो उसी प्रकार से भक्ति में जब हमें याद दिला दिया जाता है तो वो बदलाव दिखता है, और जहां तक बदलाव दिखता है वहां तक हमें समझना चाहिए कि भगवान याद आ रहे हैं। यदि बदलाव नहीं हो रहा तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान याद नहीं आ रहे। तो कई बार थोड़ा बदलाव होता है फिर से हम पहला जैसा व्यवहार शुरू कर देते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, कृष्ण भूलिया। तो जैसे ही कृष्ण भूलिया तो उसके पश्चात झपटिया, कौन, माया। तो अक्सर साधना भक्ति में भगवान थोड़ा थोड़ा याद आते हैं और ज्यादा ज्यादा भूल जाते हैं, या कभी ज्यादा ज्यादा याद आते हैं थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। उतार चढ़ाव भक्ति में होता रहता है, इसलिए हमारे अंदर वो बदलाव भी हम देखते रहते हैं कि साधना भक्ति में जब हम दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे तो अपने आप हम देखते हैं अपने अंदर बदलाव, कि मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है। जब ठीक से नहीं होता, जब टाइम पर नहीं होता, और साधना भक्ति में भक्तों के प्रति प्रेम का संबंध नहीं होता, तो अपने आप हमारे अंदर हमें लगता है, जैसे ये शरीर में जब कोई तकलीफ होती है तो अपने आप लगता है कि कुछ तो शरीर में गड़बड़ चल रहा है। जब पेट में कुछ शुरू होता है तो पता लग जाता है, ये नहीं पता कि क्या है गड़बड़, वो डॉक्टर आके बताता है क्या है, परंतु हमें पता लग जाता है कि कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो उसी प्रकार से ये थर्मामीटर भक्ति का लगा लेना चाहिए हर समय, देखने के लिए कि मेरा स्वास्थ्य भक्ति का ठीक है कि नहीं, कितने भगवान याद आ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर सारे वानरों ने देखा कि हनुमान जी अचानक अब बदले हुए से वानर दिख रहे हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को जब बताया गया कि 100 योजन जाना है, तो हनुमान जी को याद आ गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे याद आ गया मेरे अंदर कितनी शक्ति है, और वो कहते हैं कि मैं 1000 बार पूरी प्रदक्षिणा मार सकता हूं। जांबवान ने तो कहा था 21, या हनुमान जी कहते हैं कि 1000 बार मैं प्रदक्षिणा मार सकता हूं। और हनुमान जी तुरंत अब देखते हैं कि छलांग लगाने के लिए कोई लॉन्चिंग पैड होना चाहिए, तो बगल में एक बहुत विशाल पर्वत महेंद्र, तो देखते हैं कि ये अच्छा लॉन्चिंग पैड है, कि यहां से जैसे एक जो हवाई जहाज होता है उसे उड़ने के लिए हवाई अड्डे की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से हनुमान जी ने देखा कि अब यहां से उड़ान भरने के लिए ये महेंद्र पर्वत जो है ये अच्छा अड्डा है। तो महेंद्र पर्वत के ऊपर वो चढ़ते हैं, और सबसे पहले वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, और आचार्य बताते हैं कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष से बाण निकलता था, और उनके धनुष से जो बाण निकलता है वो विफल कभी नहीं जाता। उसी प्रकार से हनुमान जी ने अब जब तैयारी की छलांग लगाने की, तो वो रामचंद्र जी के बाण के समान थे कि इतनी तेजी से एक तो वो निकलता है बाण और कभी विफल नहीं जाता। तो हनुमान जी ही उतनी ही तेजी से अब छलांग लगाएंगे और उनका कार्य भी विफल नहीं जाएगा। तो अब छलांग लगाने के लिए उन्होंने महेंद्र पर्वत को थोड़ा नीचे अपने पैरों से दबाया तो पूरा जो महेंद्र पर्वत है उसमें हलचल मच गई, पूरे पर्वत में हलचल मच गई और नीचे से पर्वत टूटने लगा। सारे ऋषि मुनि जो वहां पर तपस्या कर रहे थे उनका ध्यान भंग हुआ और सारे पशु पक्षी वहां से भागने लगे, परंतु हनुमान जी, उनका एकमात्र उद्देश्य था प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना, सीता को पाना। तो उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगाते ही जब वो गए तो यहां पर सारे वानर, इन्होंने हनुमान जी को कह दिया कि क्योंकि इतने दूर आप जा रहे हो और पता नहीं वहां पर क्या होगा, तो हम जब तक आप फिर से वापस नहीं आते हम आपकी प्रतीक्षा यहां पर करेंगे। तो इतने समय तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे सारे वानर समुद्र के तट पर। तो हनुमान जी अब आकाश में उड़ते हुए और ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो एक चंद्रमा वो बादलों को भेदता हुआ जा रहा है, ऐसे हनुमान जी प्रतीत हो रहे थे। और तुरंत उनके पिताश्री वायुदेव, उन्होंने बहुत ही सुंदर वातावरण वहां पर निर्माण किया कि जो सूर्य देव की अग्नि है उस अग्नि को ढक दिया और एक प्रकार का एसी ऑन कर दिया, बहुत ही शीतल वातावरण हो गया ताकि हनुमान जी बहुत ही अच्छी तरीके से वो पहुंचे। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि हनुमान जी की जो छलांग है लंका की तरफ सीता को पाने के लिए, ये साधक की साधना भक्ति के समान है कि सीता की प्राप्ति भक्ति की प्राप्ति के समान है। और हमारी भक्ति में भक्ति के चार अंग हम देखेंगे। ये जो यात्रा हनुमान जी ने ली है, तो हम जो भक्ति की यात्रा लिए हैं, इस भक्ति की यात्रा में चार अंग हैं और कैसे हनुमान जी ने इन चारों अंगों को किस प्रकार से इनका सामना किया। सबसे पहला अंग है हमारी भक्ति का, हमारी साधना, हमारा जप, चार नियम का पालन, ये सबसे पहला अंग है। साधना के पश्चात सेवा, ये भी भक्ति का अंग है। साधना के साथ सेवा होनी चाहिए और साधना और सेवा हम करेंगे जो तीसरा अंग है भक्ति का, भक्तों के संग में। तो भक्तों का संग किस प्रकार का होना चाहिए, ये तीसरा अंग है इस भक्ति का। और चौथा अंग है प्रचार। तो साधना, सेवा, संग और प्रचार, ये चार अंग भक्ति के, जिसे हमें देखना है कि एक भी यदि कम हो तो हमारी भक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, शिथिल होती जाती है। और यहां पर हनुमान जी ने किस प्रकार से ये चारों अंगों का सामना किया, अनर्थों का सामना किया इन चारों अंगों को ठीक से पालन करने के लिए, और कौन कौन से अनर्थ, कौन कौन से राक्षस जो कि इन अनर्थों के प्रतीक हैं, ये हनुमान जी के समक्ष आए। तो जैसे हनुमान जी अब आगे बढ़े तो सबसे पहले एक पर्वत जिसका नाम है मैनाक, वो पर्वत समुद्र से ऊपर उठकर अपने आप को हनुमान जी के सामने प्रकट करता है। और ये मैनाक पर्वत का इतिहास है कि एक समय की बात है, इंद्र वो सभी पर्वतों, पहले ये सारे पर्वतों के पंख थे, सब पर्वतों के पंख थे पहले, और ये पर्वत उड़कर जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। परंतु इंद्र ने देखा कि ये गलत इस सुविधा का उपयोग कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जहां पर भी उन्हें ठीक नहीं लगता तो अपने पंख को इस्तेमाल कर उड़कर उस प्रांत पे बैठ जाते, लोगों को मार देते वहां पर। तो इंद्र ये बहुत क्रोधित हुए इन पर्वतों के ऊपर और सबके पंख काटना शुरू कर दिया कि बैठे रहो एक जगह पर। तो जैसे ही इंद्र अपने वज्र से इन सब के पंख काट रहे थे तो मैनाक पर्वत वो डर के मारे उड़ रहे थे और वायु देव ने शरण दी मैनाक पर्वत को और अपनी शक्ति से समुद्र के अंदर बिठा दिया मैनाक पर्वत को। तो अब मैनाक पर्वत सोच रहे हैं कि इनके पुत्र आ रहे हैं तो कुछ सेवा करनी चाहिए इनकी, तो इसलिए हनुमान जी की सेवा करने हेतु मैनाक पर्वत ऊपर आते हैं और अपने आप को हनुमान जी की सेवा के लिए प्रकट करते हैं। वो ये कहते हुए कि आप इतनी दूर जा रहे हो 100 योजन, तो थोड़ा बैठकर आराम करो, जाने से पहले थोड़ा विश्राम करो, आराम करो। तो सबसे पहला जो अंग है भक्ति का, साधना, यहां पर हनुमान जी अपनी साधना दिखा रहे हैं कि साधना कैसी होनी चाहिए। कि कई बार हम देखते हैं ये मैनाक पर्वत जो आया है ये किसका प्रतीक है हमारी साधना में। जब हम साधना प्रारंभ करते हैं तो साधना में हमें सुविधाएं मिलती हैं, भक्ति में बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं हमें, और धीरे धीरे क्योंकि अब जो भौतिक क्लेश है वो कम हो रहे हैं, तो क्योंकि भौतिक क्लेश कम हो रहे हैं तो सुविधाएं मिलती हैं, कई बार भौतिक सुविधाएं भी मिलती हैं। और कई बार देखा गया है कि भक्ति में हम उस जंजाल में फंस जाते हैं कि भक्ति करने आए हैं सब जंजाल से मुक्त होने के लिए, परंतु जो सुविधाएं मिली भक्ति में उसका दुरुपयोग कर और जंजाल में फंसते हैं हम भक्ति में। तो कभी भी हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि मैं साधना भक्ति करूंगा और साधना भक्ति से मैं और कोई अपना भौतिक कार्य अपना साध्य करूंगा। एक सबसे बड़ा अपराध है भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति और भक्ति के प्रति। तो ये जो सुविधाएं मिलती हैं हमें भक्ति में आने के वजह से, इसे कहते हैं परितोषता। कि हम सोचते हैं कि बस मेरी भक्ति बहुत आनंद से चल रही है, कि मुझे अब भौतिक क्लेश कुछ नहीं है, इसलिए मेरी भक्ति जो है मैं अपनी भक्ति में संतुष्ट हूं, परितुष्ट हूं। तो ये जो जिसे अंग्रेजी में कंप्लेसेंसी भी कहते हैं, परितोषता, कि भक्ति में एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त कर लेना कि बस मेरा जो 16 माला है वो टाइम टू टाइम होता है, 6:45 बजे मैं बैठता हूं तो 7:30 बजे जो 16वां राउंड है बराबर पूरा होता है, और मुझे अब जो फिलॉसफी है वो तो समझ गई है पूरी, आप कहो तो कुछ श्लोक भी मैं सुना सकता हूं, और थोड़ा प्रचार भी मुझे अच्छी से आता है। तो ये जो एक बाहरी संतुष्टि मिलती है हमें भक्ति में, वो हमें भक्ति में रुका देती है। जैसे कि यहां पर मैनाक प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी को रुकाने का, विश्राम देने का, आराम देने का। और हम उदाहरण देखते हैं रामायण में ही भरत का, कि देखिए भरत, उन्हें वनवास नहीं मिला था, और यदि उन्हें राजगद्दी नहीं लेनी थी फिर भी वो दशरथ के राजमहल में तो रह सकते थे क्योंकि उनके पुत्र थे, परंतु क्योंकि रामचंद्र जी नहीं है वहां पर और उनकी सेवा वो ऐसा करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि मैं आपकी सेवा बिना किसी सुविधा के करूंगा, तो नंदीग्राम गए और वहां पर रहकर एक छोटी सी कुटिया में केवल कुछ जौ जिसे कहते हैं उसे गोमूत्र में रखकर वो खाते थे, बस वही। तो वो दिखा रहे थे अपने उदाहरण से कि प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए मुझे कोई सुविधाएं की आवश्यकता नहीं, और वो ये दिखा रहे थे कि सुविधा जब मिलती है तो धीरे धीरे हम उस सुविधा में इतने ज्यादा निमग्न हो जाते हैं कि फिर सेवा दूर रह जाती है, कि जिसके लिए हम आए थे वो बिल्कुल नहीं कर पाते, और भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम ये सब कुछ तो दूर रह जाता है। जैसे भक्तों के विषय में एक शुद्ध भक्त का उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक आटे की चक्की होती है वैसे एक शुद्ध भक्त को होना चाहिए, समझ गए? एक शुद्ध भक्त को आटे की चक्की के समान होना चाहिए, कि आटे की चक्की को आप कहीं पर भी ले जाओ वो आटे की चक्की एक ही काम करेगी, क्या कर रही? गेहूं को पीसना। तो उसी प्रकार से यदि आटे की चक्की को आप यहां पर रखो नासिक में, या आटे की चक्की को स्वर्ग लोक ले जाओ, स्वर्ग लोक में भी वहां पर वो केवल गेहूं ही पीसेगी वो चक्की। तो उसी प्रकार से जो एक शुद्ध भक्त होता है उसे कहीं पर भी ले जाओ वो शुद्ध भक्ति ही करेगा। नारायण परा सर्वे न कुटश्च न भिव्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, भागवत में कहा गया है कि जो नारायण परायण है भक्त उन्हें चाहे नरक में ले जाओ, चाहे स्वर्ग में ले जाओ, चाहे उन्हें अपवर्ग दे दो, कुछ भी करो वो हर समय भगवान की भक्ति में ही लगे रहेंगे। तो उन्हें सुविधाओं से मिले या न मिले, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी का जब सब कुछ छीन लिया गया तब भी उनकी भक्ति अनन्या ही थी, और जब उन्होंने इस्कॉन स्थापित किया और सब कुछ सब ऐश्वर्य उन्हें मिला तब भी उनकी भक्ति उतनी ही अनन्या थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ छीन लिया गया तो भगवान को कोसने लगे, और जब सब कुछ मिल गया ऐश्वर्य तब फिर कहा अब आपकी भक्ति देखते हैं कुछ कर पाएंगे शायद। तो जब सारी संपत्ति छीन ली गई प्रभुपाद जी वैसे ही थे, और जब संपत्ति दे दी गई इतनी फिर भी प्रभुपाद जी उसी स्तर की भक्ति कर रहे थे। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि ये आप 16 माला ही क्यों कहते हैं करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि असली भक्ति क्या है ये प्रश्न पूछना कि 16 माला ही क्यों। जैसे कई लोग पूछते हैं ना 16 माला ही क्यों, तो शुद्ध भक्त भी ये प्रश्न पूछते हैं 16 माला ही क्यों, 160 माला क्यों नहीं, 1600 माला क्यों नहीं, 16000 माला क्यों नहीं। तो व्यक्ति वो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी को ये प्रश्न पूछकर मैं अपनी माला थोड़ा कम करा लूंगा, तो प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न पूछा 16 माला ही क्यों, 16000 क्यों नहीं। अब देखिए भक्ति में हम ये जो जप है हमारा ये जप को छोड़कर हम भक्ति के बाकी जो अलग अलग बाहरी अंग हैं उसमें निपुण बन सकते हैं। जैसे कि डीटी वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, तो भगवान का ड्रेसिंग करना, मंत्रोच्चारण कर आरती करना, ऑफरिंग करना टाइम पर, इसमें हम निपुण बन सकते हैं। प्रचार करने में निपुण बन सकते हैं कि किस समय कौन सा श्लोक बोलना है, कैसा लेक्चर देना है, इसमें निपुण बन सकते हैं। फिर पकाने में, प्रसाद बनाने में, इसमें निपुण बन सकते हैं। और कीर्तन करने में निपुण बन सकते हैं, कुछ वाद्य बजाने में निपुण बन सकते हैं, ये सब में हम निपुण बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। परंतु हम कभी ये नहीं कह सकते कि मैं जप करने में अब एक्सपर्ट हो गया, कि मैं जप करने में निपुण हो गया। ये जप करना कोई कॉलेज का कोर्स नहीं है कि हाँ मैं अब पहले साल में हूं, एक दो तीन चार, चौथे साल के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, परफेक्ट चैंटर। कि जप में बहुत निपुण है ये। जिस क्षण हम सोचते हैं कि मैं जप में निपुण हो गया, उसी क्षण नींद आएगी, देखना। और फिर दूसरे भक्त याद दिलाएंगे, प्रभु जी थोड़ा उठिए, आपका जो निपुण जप है वो आपको किसी और लोक में ले जा रहा है, गोलोक नहीं, निद्रा देवी के लोक में ले जा रहा है। तो जैसे ही थोड़ा अहंकार होता है, हम सोचते हैं कि अब मेरा जप बहुत अच्छा हो रहा है। इसीलिए हर समय, जैसे एक जो खिलाड़ी होता है, तो खिलाड़ी को जब वो कोच ट्रेन करता है तो हर समय उसके दुर्गुण बताता है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो उसी प्रकार से हमें हर समय अपने जप में कुछ खोट निकालते रहनी चाहिए कि मेरा जप इस प्रकार से ठीक नहीं, और उसे कैसे ठीक करूं। तो इस संसार में देखिए, लोग, हालांकि इस संसार में भी कोई निपुण नहीं बन सकता, क्योंकि ये संसार बनाया गया इस तरीके से कि जितना हम प्रयास करेंगे निपुण बनने का, उतना अधिक ये संसार हमें दिखाएगा कि हम कितने कमजोर हैं। और उदाहरण दिया गया है कि इस संसार में जब व्यक्ति प्रयास करता है निपुण बनने का, सुखी होने का, तो उसी प्रकार से है जैसे कोई प्याज को छील रहा है। हालांकि आप लोग अभी कम जानते होंगे प्याज के विषय में, तो प्याज को जब छीला जाता है, तो एक एक छिलका, जब प्याज का कोई छीलता है तो एक एक छिलका आंखों में आंसू लाता है। तो इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है सुखी बनने का, वो उस प्याज को छीलने के समान है। वो सोचता है एक छिलके बाद ये प्याज थोड़ा कम रुलाएगा, तो एक और छिलका छीलता है, देखता है कि वो और रुला रहा है, तो सोचता है कि शायद अगला वाला जो छिलका है वो नहीं रुलाएगा मुझे। तो इसी आशा में बद्ध जीवात्मा प्रयास करता रहता है, छिलका निकालता रहता है इस प्याज का। इसीलिए कहा गया है प्याज नहीं खाना चाहिए। एक कारण ये भी है। अब देखिए, जब भक्ति में कोई समस्या आती है हमारे जीवन में, तो जब हम जप करते हैं और वो समस्या है हमारे जीवन में, तो जप करते समय भगवान के ऊपर ध्यान होना चाहिए, परंतु समस्या के ऊपर ध्यान करते हैं कि ये जो समस्या है इसे कैसे मिटाया जाए, तो समस्या मिटाने के लिए जप है, और जप में भगवान के ऊपर जो ध्यान करेंगे वो दवाई है उस समस्या के निवारण के लिए, उस बीमारी के लिए। परंतु यदि आपको दवाई दी गई है और आप दवाई को रख कर केवल जो बीमारी है उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी? आपको ध्यान देना है दवाई के ऊपर, बीमारी पर ध्यान दिए हैं डॉक्टर, क्योंकि हम मरीज है तो हमें ध्यान देना है दवाई के ऊपर। तो जो जप है और जप में भगवान के ऊपर जो ध्यान है वो दवाई है, परंतु जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है हम केवल बीमारी जो है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं और जो दवाई है उसे साइड में रखते हैं कि नहीं पहले मैं बीमारी पर ध्यान देता हूं फिर देखता हूं कि ये दवाई कुछ काम आएगी कि नहीं। इसीलिए जब हम हमारी भक्ति में एक प्रकार की संतुष्टि के स्तर पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा जो जप है वो एकदम टाइम टू टाइम हो जाता है और मेरी भक्ति में कोई समस्या नहीं दिख रही, तो वो समय आता है जब हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो बाहर आती हैं, कि जब तीव्रता रहती है भक्ति में तो जो पुरानी आदतें हैं गलत आदतें वो समय नहीं रहता उनको बाहर आने का। तो कई बार भक्ति में क्या देखा जाता है कि जब हम सुनते हैं कि ये संसार दुखालय है और भक्ति में कुछ समय बिताने के पश्चात अब लगता है कि वो दुख इतना महसूस नहीं होता, तो कई बार हमारी याद से ये जो बात है कि ये संसार दुखालय है वो चला जाता है, तब फिर थोड़ा संशय होने लगता है, एक तो भक्ति के पथ के ऊपर और संशय होता है कि ये संसार शायद इतना दुखालय नहीं है। तो वो जो स्तर आता है परितोषता का, जिसके अंदर हम थोड़े संतुष्ट अपने आप को मानते हैं, तो हमारी पुरानी जो बुरी आदतें हैं वो बाहर निकलकर हमें सताती हैं फिर। इसलिए तीव्रता होनी चाहिए भक्ति के अंदर हर समय। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त थे, वो जब शुरू किए थे परंतु धीरे धीरे इसी प्रकार की पारितोषता उनके जीवन में आई और उन्होंने फिर कुछ और भक्ति के साथ करना शुरू किया, योग साधना, अलग अलग प्रकार के योग आसन और इनकी ट्रेनिंग लेना, ये सब शुरू किया। तो इतना ज्यादा उस योग में घुस गए वो कि अब भक्ति योग कम होता गया। तो एक बार वो श्रील प्रभुपाद जी के साथ कार में थे तो श्रील प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि देखिए योग में अलग अलग रसायन हैं, आपका लिवर यदि खराब है तो ये रसायन लीजिए और आपका लिवर ठीक हो जाएगा, आपके हृदय में कुछ तकलीफ है तो ये आसन और ये रसायन लीजिए तो आपका हृदय ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे अलग अलग आसन और रसायन के विषय में। तो उसी समय जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो पीछे मुड़कर कहता है प्रभुपाद जी से कि शायद लगता है ब्रेक फेल हो गया। तो प्रभुपाद जी अब इस योगी की तरफ मुड़कर बोलते हैं अब कौन सा आसन और रसायन काम आएगा, कीजिए कौन सा आसन करेंगे आप इस गाड़ी के अंदर अपने आप का उद्धार करने के लिए, परंतु मेरे पास है एक रसायन और वो कौन सा रसायन है, कृष्ण नाम रसायन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कृष्ण नाम रूपी रसायन है यही एकमात्र रसायन है जो काम आएगा। तो प्रभुपाद जी कहे तो मेरे साथ अभी इस रसायन का पान करो, हम दोनों का उद्धार केवल यही रसायन अब करेगा। तो वो समझ गया तो उसने जप करना शुरू किया प्रभुपाद जी के साथ, और कुछ समय आगे जाने के बाद फिर ड्राइवर कहता है कि अब कुछ ठीक हो रही है, गाड़ी काम कर रही है, ब्रेक काम कर रहा है। तो जब इस प्रकार की बीच में तीव्रता आ जाती है तब महामंत्र याद आ जाता है, परंतु जो तीव्रता नहीं रहती तो कुछ रसायन यहां, कोई योग साधना वहां, वास्तुशास्त्र, फिर और क्या, ज्योतिष शास्त्र, ये अलग अलग प्रकार के जो मैनाक के रूप हैं वो हमें भ्रमित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में प्रगति देखनी चाहिए कि कितना उत्साह है हमारे अंदर भगवान को पाने का, कि रोज सुबह जब हम उठते हैं तो क्या हमारे अंदर वो उत्साह रहता है कि आज एक और दिन मुझे मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। जब सुबह मंगल आरती से पहले जब अलार्म बजती है 3:30 बजे या 4 बजे, तो क्या वो अलार्म मुझे मधुर लगती है कि नहीं? भक्ति में प्रगति का एक लक्षण है ये, कि जब हमें सुबह 4 बजे की अलार्म मधुर लगने लग जाए तो मान लेना चाहिए भक्ति में थोड़ी प्रगति हो रही है। और जब तक वो अलार्म सुबह 4 बजे जब बजती है तो ऐसा लगता है कि ये आकाश अब गिरने वाला है मेरे ऊपर, प्रलय होने वाला है, 4 क्यों बजे। तो जब ये विचार होता है तब तक भक्ति में बहुत कम प्रगति हो रही है। जब मन में ऐसा लगता है कि मानो ये अलार्म की आवाज जैसे कोई चाकू की धार के समान है जो मेरे कान में जा रही है, और कई बार देखा जाता है कि अलार्म लगाई है 4 बजे की, परंतु वो आवाज नहीं सुननी है 4 बजे की अलार्म की, उसके वजह से 3 बजे ही डर के मारे कोई व्यक्ति उड़ जाता है कि शायद 2 मिनट में अलार्म बजने वाली है, तो फिर देखता है 2 मिनट बजेगी, अभी बजेगी, मुझे नहीं सुनना लेकिन बजेगी, फिर देखते हैं 1 घंटा बीत गया, अरे बजी क्यों नहीं, फिर पता लगा कि 1 घंटे पहले से ही हम डर के मारे उस अलार्म से बचना चाहते थे। तो जब हम सोचते हैं कि भक्ति आराम से करूं मैं, सब कुछ आराम से होना चाहिए, हमारे मंदिर में एक भक्त आए और उन्होंने जब ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी समस्या उनकी थी मंगल आरती, ये सबसे बड़ी समस्या थी, इतना जल्दी उठकर मंगल आरती अटेंड करना। और खैर हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में तो फिर भी आधा घंटा देरी से है, जैसे यहां पर भी 5 बजे है मंगल आरती, बाकी इस्कॉन मंदिरों में तो 4:30 बजे शुरू हो जाती है। तो इन भक्त को वो सबसे बड़ी तपस्या लग रही थी, तो ये आए गए महाराज के पास एक दिन, और महाराज को जाकर कहते हैं कि मेरा एक निवेदन है, एक सुझाव है, यदि मंगल आरती 9 बजे की जाए तो कैसा रहेगा? सही में उन्होंने कहा ये बात कि मंगल आरती 9 बजे यदि की जाए तो देखिए फिर सभी फ्रेश रहेंगे, कोई जप में सोएगा नहीं, और आपके भागवतम क्लास में भी कोई सोएगा नहीं, और सबसे ज्यादा तो मुझे क्या है कि राधा गोपीनाथ जी की चिंता है कि उन्हें क्या है कि रोज 3:30 बजे उठा देते हैं हम लोग, तो भगवान है उनको थोड़ा आराम मिलना चाहिए, और क्या है बंबई में सभी देरी से सोते हैं, इतनी आवाज होती है, तो बंबई में भगवान को थोड़ा देरी से उठना चाहिए। तो भगवान के लिए अगर मंगल आरती 9 बजे की जाए तो मेरा सुझाव है। तो देखिए हम भक्ति में भक्ति करना चाहते हैं परंतु भक्ति के साथ साथ जो आराम है वो भी चाहते हैं, तो दोनों नहीं मिल सकते हमें, या तो आराम मिलेगा या भगवान मिलेंगे, या तो आराम या राम। यदि राम चाहिए तो आराम को त्यागना होगा, और यदि आराम चाहिए तो फिर रामचंद्र जी नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये जो मैनाक पर्वत ये मुझे सुविधा दे रहा है विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए, थोड़ा सा एक ग्लास पानी पीजिए, थोड़ा जूस पीजिए, और यदि आप भूखे हैं तो मेरे पर्वत पर बहुत से फल हैं वो आप खा सकते हैं। तो हनुमान जी देखिए निरादर नहीं करना चाहते थे, तो हनुमान जी ने क्या किया, केवल स्पर्श किया मैनाक को कि भाई तुम चाहते हो कि मैं यहां पर रुकूं, तो मैं स्पर्श कर वो इच्छा पूरी कर रहा हूं तुम्हारी। तो केवल स्पर्श कर हनुमान जी आगे चले गए कि उनके मन में केवल एक ही विचार था, प्रभु श्री रामचंद्र जी की इच्छा, उनके व्रत को पूरा करना। अब वो आगे जाते हैं तो एक और राक्षसी वो समुद्र से ऊपर उठकर अपने आप को प्रकट करती है, और इसका नाम था सुरसा। और ये राक्षसी, इसे वरदान मिला था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, पता नहीं अब ये वरदान था कि क्या, कि जो भी समुद्र से गुजरे तुम उसे खा सकती हो, वो तुम्हारे मुंह में जा सकता है जो भी समुद्र से गुजरे। तो सुरसा वहां खड़ी हुई और सुरसा ने अब हनुमान जी से कहा कि ये नियम है यहां का, जो भी यहां से गुजरता है मेरे मुंह में जाएगा। तो जो दूसरा अंग भक्ति का जिसकी हमने चर्चा की, सेवा, तो किस प्रकार से अब हनुमान जी इस ये जो अंग है सेवा का अंग भक्ति का, किस प्रकार से एक अनर्थ को दूर करके भगवान की सेवा में कैसे लगते हैं, और सुरसा ये कौन सा अनर्थ है, अहंकार का अनर्थ, और कैसे सुरसा ने अपना अहंकार दिखाया कि उसने कहा कि मैं अपना मुंह खोल रही हूं और मुंह के अंदर तुम्हें खाने वाली हूं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मुंह खोलो। तो सुरसा अपना मुंह खोलती है, 10 योजन लंबा सुरसा का मुंह, तो हनुमान जी भी 10 योजन बड़े हो जाते हैं। अब यदि मुंह में कुछ डालना है तो मुंह से छोटा होना चाहिए वो पदार्थ डालने के लिए। यदि आपको रसगुल्ला खाना है तो जो रसगुल्ला है, पता नहीं ये रसगुल्ला का उदाहरण आता है मुझे, या और कुछ लीजिए, गुलाब जामुन लेते हैं इस बार। यदि आपको गुलाब जामुन खाना है तो आपके मुंह से छोटा होना चाहिए तभी अंदर जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी बंबई में, वो हमारे पास आया और वो बोल रहा था कि उनके अंकल ये हैं हड्डियों के डॉक्टर, तो इनके पास एक ऐसा केस आया, बहुत ही विचित्र केस आया एक पेशेंट का, और वो ऐसा था कि ये लड़का बंबई में एक जगह पर पानी पूरी खाने गया, और वो पानी पूरी वाले से इसने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी वो पूरी निकालो और वो बना कर दो। और आप जानते हैं पानी पूरी लोग कैसे खाते हैं, वो पूरा मुंह में लेना होता है। तो ये पानी पूरी वाले ने जो सबसे बड़ी पूरी जो थी वो निकाली और वो बनाकर उसको दी, तो अब वो इतनी बड़ी पूरी थी उसके मुंह से बड़ी, तो इतना उसने अपना मुंह बाया, इतना बड़ा किया, और अंदर जब डालने गया तो वो अटक गई, वो इतनी बड़ी पूरी वो अटक गई, और उसका जो नीचे का जबड़ा था वो उसका जो हड्डी था वो सरक गया यहां का, और वो यहां पे सर का वो हड्डी अटक गई, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पूरी वहीं पर अटक गई, और ऐसे ही उसे उस डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो अगली बार पानी पूरी आप खाओ तो संभल के खाना। तो अब सुरसा ने देखा कि मेरा मुंह 10 योजन है और ये भी 10 योजन हो गया, तो सुरसा ने अपने मुंह को और बढ़ाया 20 योजन, तो हनुमान जी भी 20 योजन हो गए, 30 योजन हनुमान जी भी, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन, ऐसे वो अपना मुंह बढ़ा रही थी। तो 80 योजन तक उसने अपना मुंह बढ़ाया तो कितना बड़ा उसका मुंह हो गया होगा, वो समुद्र ही 100 योजन था। तो जैसे उतना बड़ा मुंह उसका हो गया 80 योजन का, तो हनुमान जी फिर से 10 योजन के हो गए और मुंह में जाकर थोड़ा घूम घाम कर आ गए, क्योंकि इतना बड़ा मुंह बंद करने में भी समय लग रहा था सुरसा को। तो उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और फिर सुरसा उसने अपना मुंह बंद किया सोचते हुए कि अब हनुमान जी अंदर होंगे और हनुमान जी बाहर। तो सुरसा से कहते हैं, भाई तुम्हारा जो नियम था वो तो पूरा कर दिया मैंने, कि नियम ये था कि जो कोई यहां से जाएगा तुम्हारे मुंह के अंदर जाकर जाएगा, तो मैं चला गया। तो सुरसा अब अपने बड़े मुंह से हंसने लगी और वो कही हनुमान जी को कि तुम बहुत चतुर वानर हो। तो आचार्य बताते हैं कि जो सुरसा जो अपना मुंह बढ़ा रही थी इतना बड़ा 80 योजन तक, तो ये अहंकार के समान है जो अपने आप को बढ़ाता रहता है, और इस अहंकार के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो हनुमान जी भी बड़ा हो रहे थे परंतु इसका कोई अंत नहीं था। तो हनुमान जी ने विजय कैसे प्राप्त की सुरसा के ऊपर? छोटा बनकर। तो अहंकार के ऊपर यदि हमें विजय प्राप्त करनी है तो एक ही शस्त्र है, और वो कौन सा शस्त्र है? नम्रता। नम्रता यही एकमात्र शस्त्र है जो अहंकार के ऊपर हमें विजय प्राप्त कराएगा, और ये हमारी सेवा में नम्रता होनी चाहिए। जैसे कि हनुमान जी अब अपनी सेवा में यहां पर नम्रता दिखा रहे हैं। जैसे कि संसार में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नियम क्या है कि जो जितना भारी है उतना जल्दी नीचे खींचा जाएगा, और जो जितना हल्का है वो उतना ऊपर जा सकता है। तो जितना अहंकार रहेगा हमारे अंदर उतना ज्यादा हम इस धरती पर ही चिपके रहेंगे, और जितना हम अहंकार से मुक्त रहेंगे उतना हम हल्का रहेंगे और उतना हम प्रगति करेंगे। इसीलिए नम्रता की तुलना एक फल के छिलके से की गई है। जैसे आम होता है तो आम के अंदर रस है, आम के अंदर सुगंध है, आम के अंदर वो खाने का जो उसका पल्प है वो सब कुछ है आम के अंदर, परंतु इस सब को टिकाए रखा है कौन? वो छिलका आम का। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर कुछ गुण होंगे, परंतु यदि उन गुणों को हम नम्रता से नहीं उसका लेप करते तो सारे जो गुण है, जैसे आम का यदि छिलका निकाल दिया जाए तो आम जो है धीरे धीरे फिर सूखता है और सड़ जाता है। तो वो छिलका सब कुछ आम के अंदर बनाए रखता है। उसी प्रकार से नम्रता हमारे जीवन में हमारे सारे गुणों को भगवान की सेवा में लगाती रहेगी। एक और उदाहरण दिया गया है कि यदि आपके पास बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों को यदि आपको तैराना है तो नाव होनी चाहिए। तो एक बड़ी लकड़ी की नाव बड़े बड़े पत्थरों को तैरा सकती है, परंतु यदि नाव नहीं तो एक छोटा सा कंकर भी आप डालेंगे पानी में तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो नाव है इसकी तुलना नम्रता से की गई है, और जो बड़े बड़े पत्थर हैं की तुलना हमारे अंदर जो कोई गुण होंगे उनसे की गई है। तो यदि नाव है तो ये सारे जो गुण हैं उनको भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, परंतु यदि ये नाव नहीं तो एक भी गुण हो कंकर के समान भी वो भी डूब जाएगा और हमें लेके डूबेगा। तो इसीलिए हमें तीन प्रकार से हमारी भक्ति में परखना चाहिए हमारी भक्ति को रोज, और ये नम्रता के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें परखना चाहिए अपने आप को कि मैं कितना आतुर हूं सेवा करने के, न कि मैं कितना आतुर हूं सेवा लेने के। तो ये हर समय ये चीज परखनी चाहिए कि कितनी आतुरता है मेरे अंदर सेवा करने की और कितनी आतुरता है मेरे अंदर सेवा लेने की, तो दोनों में कितना अंतर है। कई बार पहले तो दो होने चाहिए अंतर करने के लिए, कई बार एक ही होता है आतुरता सेवा लेने की। तो इसके अंदर हमें देखना है कि हमारे अंदर कितनी आतुरता है सेवा करने की, और दूसरी तरीके से हम अपने आप हमारी नम्रता को परख सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी भावना है भगवान का गुणगान करने की, कि कितना मैं भगवान का गुणगान करता हूं। देखिए, केवल कीर्तन में नाचना, कीर्तन में जोर से गाना, केवल इसी से नहीं देखा जाता कि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अंदर से भावना होनी चाहिए कि हां, मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा भगवान का गुणगान कर रहा हूं, उनकी कीर्ति का गान कर रहा हूं। तो हमें यह समझना चाहिए कि रोज मैं कितनी आतुरता से भगवान का गुणगान करना चाहता हूं, या मैं कितनी आतुरता से अपना गुणगान सुनना चाहता हूं। तो भक्ति में प्रगति होगी जितनी आतुरता से हम भगवान का गुणगान करेंगे। और तीसरा तरीका है हमारी नम्रता को परखने का कि मैं रोज कितना समय भगवान का चिंतन करता हूं और कितना समय अपने आप का चिंतन करता हूं। तो हम देखेंगे कि यदि हम इसका एक रिकॉर्ड निकालें कि कितना घंटा मैंने आज स्वयं का चिंतन किया और मैंने कितना घंटा, घंटा तो दूर की बात है, कितना समय, कितना मिनट, कितना सेकंड, कई बार तो सेकंड सेकंड भी नहीं रहता कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो ये तीन चीज कि कितनी आतुरता है मुझे सेवा करने की या सेवा लेने की, कितनी आतुरता है भगवान का गुणगान करने की या अपना गुणगान सुनने की, और कितनी आतुरता है मुझे भगवान का ध्यान करने की, इसके अतिरिक्त मेरा स्वयं का ध्यान करने की। तो इससे हम जान सकते हैं, हनुमान जी सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए उन्होंने सुरसा के सामने नम्रता की दिखाई कि ठीक है, मैं मारना नहीं चाहता तुम्हें, परंतु तुम्हें, तुम्हारा निरादर नहीं करूंगा, परंतु मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है सीता को प्राप्त करना। और जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि हनुमान जी वो सुरसा से स्पर्धा नहीं कर रहे थे। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि जब हनुमान जी बड़ा बड़ा हो रहे थे तो शायद हनुमान जी स्पर्धा कर रहे थे सुरसा से। तो भक्ति में जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो ये जो स्पर्धा की वृत्ति है ये कई बार आ जाती है हमारे अंदर। जैसे कि हमें बचपन में वो कहानी आई थी एक खरगोश और कछुए की, आप लोगों ने सुनी थी ये कहानी, खरगोश और कछुए की। तो हम सब जानते हैं कि कौन जीता था उस स्पर्धा में, कछुआ जीता था। क्यों जीता था कछुआ? क्योंकि खरगोश वो सोच रहा था बहुत अहंकारी था वो, वो सोच रहा था कि मैं तो कभी भी भाग कर चला जाऊंगा, ये कछुआ तो इतना धीरे धीरे चल रहा है। तो उसने यहां आराम किया, वहां आराम किया, ये देखते हुए नजारे देखते हुए जा रहा था, और आराम करते करते खरगोश सो गया बिना अलार्म लगाए, और कछुआ जीत गया। परंतु इस कहानी का और एक मोड़ है, तो कछुआ जब जीत गया तो खरगोश ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, तो अगले साल फिर से रेस लगाई। तो फिर से रेस लगाते समय अब खरगोश ने सोचा कि अब मैं बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होऊंगा। तो दूसरे साल जब रेस लगाई तो खरगोश जीत गया। तो अब कछुए ने सोचा कि भाई यदि मुझे जीतना है अगले साल तो मुझे कुछ युक्ति निकालनी होगी। तो कछुआ खरगोश से क्या कहता है कि इस साल हम रेस लगाएंगे, स्पर्धा करेंगे, परंतु जो रास्ता होगा हमारे रेस का वो मैं चुनूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम रास्ता चुनते हो और तुम्हें पता है कौन से रास्ते से जाना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी भागकर पहुंच जाते हो। तो खरगोश को लगा कि जो भी रास्ता ये चुने मैं तो जीतने ही वाला हूं। तो कह दिया ठीक है चुनो कौन सा रास्ता। तो कछुए ने रास्ता चुना नदी का, जहां से बीच में नदी गुजरती है, क्योंकि और जैसे वो लोग भागते भागते वहां नदी के तट पर पहुंचे तो अब खरगोश रुक गया, नदी सामने है, यहां से वहां कैसे जाऊं। तो कछुआ खरगोश की तरफ देखता है, अब यहां पर ही रहो मैं चला आगे। तो कछुआ तैरते तैरते नदी से तैर कर उस तट तक पहुंच जाता है और उसे टाटा कर कर कहता है कौन जीता इस साल। तो फिर दोनों में इस प्रकार से स्पर्धा होती, कभी ये रास्ता चुनता कभी ये रास्ता चुनता, ये जीतता वो जीतता। फिर उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम संधि कर लेते हैं कि एक साल ऐसी स्पर्धा करते हैं कि रास्ते में कछुए तुम ठीक से चल नहीं पाते तो मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठाऊंगा। तो उस कछुए को खरगोश ने अपने पीठ पर उठाया जब रास्ते पर वो चल रहा था, भाग रहा था, और जैसे ही नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर उठाया और इस प्रकार से दोनों जीते। तो भक्ति में हमें इस प्रकार की स्पर्धा करनी चाहिए कि सभी जीतने चाहिए। तो खरगोश और कछुआ यहां पर जो अंतिम रेस हुई, स्पर्धा हुई, उसमें वो एक दूसरे के साथ स्पर्धा नहीं कर रहे थे बल्कि परिस्थिति से स्पर्धा कर रहे थे। और परिस्थिति क्या थी, या तो थल या जल, ये परिस्थिति थी। तो दोनों संधि कर रहे थे परिस्थिति से जूझने के लिए कि यदि जमीन हो तो कैसे कछुए को सहायता करे खरगोश, और यदि नदी आए तो कैसे कछुआ जो है खरगोश की सहायता करे। तो भक्तों के संग में भी हमें इस प्रकार से ही रहना चाहिए कि ठीक है यदि मेरे अंदर कुछ गुण हैं, यदि मैं कुछ सेवा ठीक से कर पाता हूं तो कैसे मैं दूसरे भक्त की सहायता करूं उस सेवा में, उसे और निपुण बनाने के लिए, और उसे भी यही सोचना चाहिए। तो ये जो कहानी है खरगोश और कछुए की, ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सबको एक साथ गोलोक वृंदावन जाना है, केवल एक को नहीं, हम सबको एक साथ गोलोक वृंदावन जाना है। प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे लगता नहीं मैं गोलोक वृंदावन जा पाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा क्यों नहीं, और जितने भी भक्त बैठे थे प्रभुपाद जी ने कहा तुम गोलोक वृंदावन जाओगे, तुम जाओगे, तुम जाओगे, सबको कहा तुम सब जाओगे गोलोक वृंदावन, केवल एक को छोड़कर, मिस्टर नायर, वो जिसने इतनी तकलीफ पहुंचाई थी जुहू प्रोजेक्ट के लिए। प्रभुपाद ने कहा उस एक को छोड़कर सभी, पूरा इस्कॉन जाएगा गोलोक वृंदावन। तो भक्त क्या चाहते हैं कि हम सभी गोलोक वृंदावन जाएं। आप चाहते हैं ना कि आप चाहेंगे कि हम में से कुछ यहां पर रुक जाएं, नासिक की गर्मी और मच्छरों के बीच, कि हम चाहते हैं कि हम सब वहां पर एक साथ भगवान के धाम पहुंचे, जैसे खरगोश और कछुए ने संधि की, तो उस प्रकार से भक्तों के अंदर उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, उस प्रकार की संधि होनी चाहिए। परंतु कई बार देखा जाता है कि हम भक्ति में जब आते हैं तो पहले हमारा नाम होता है भक्त, भक्त प्रमोद, भक्त महेश, और उसके बाद फिर जब दीक्षा मिलती है तो फिर दास लगता है। हालांकि हम पहले अपने आप को दास, अनुदास, अनुदास कहते हैं, परंतु अब दीक्षा मिल गई तो केवल दास, और फिर थोड़ा और ब्राह्मण दीक्षा हो गई तो अब दूसरे भक्त मुझे प्रभु कहेंगे। जैसे एक हमारे बंबई के एक विद्यार्थी थे, तो उनको जब दीक्षा मिली तो सभी उनको प्रभु बुलाते थे। अब दीक्षा मिल गई है तो प्रभु बुलाते थे, तो फोन पे भी जब वो कोई पूछता था कि कौन बोल रहे हैं, मैं फलाना प्रभु बोल रहा हूं, दास फिर बाद में बोलते थे क्योंकि इतनी बार स्वयं को प्रभु प्रभु सुना है तो इसलिए राधानाथ महाराज एक बार बता रहे थे कि पहले हम दास, दास, अनुदास होते हैं, फिर दास बनते हैं, फिर प्रभु बनते हैं, और फिर महाप्रभु बनना चाहते हैं। तो यहां पर हनुमान जी सुरसा का उदाहरण से बता रहे हैं कि हनुमान जी ने सोचा कि मैं ये कूदना मैंने प्रारंभ किया है, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं सुरसा से स्पर्धा करूं। हनुमान जी सोच रहे थे, जब वो बढ़ रहे थे तो हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं यहां पर स्पर्धा करने नहीं आया, मैं आया हूं यहां से सीता को प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हम इस्कॉन में भक्ति में आते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि मैं यहां पर स्पर्धा के लिए नहीं आया, मैं किस लिए आया? सबसे पहले भक्त बनने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हनुमान जी यहां पर अपने उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में यह घटना आती है कि जब वो छोटे थे निमाई, तो उनके एक मित्र थे जिन्होंने न्याय के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, और एक दिन वो निमाय को आकर वो न्याय की पुस्तक देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने न्याय के ऊपर पुस्तक लिखी है, तो देखो ये ठीक है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं जब निमाय, वो निमाय पंडित थे और इतने बड़े वो स्वयं न्यायी थे, तो उन्होंने भी एक न्याय के ऊपर पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने अपने मित्र को कहा कि मैंने भी एक न्याय के ऊपर पुस्तक लिखी। तो ये जो मित्र, जब इसने देखा कि अरे निमाई पंडित ने न्याय के ऊपर पुस्तक लिखी है तो मेरी न्याय की पुस्तक कौन पढ़ेगा, तो ये तो बड़ा अन्याय हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर वो कहता है, फिर तो मेरी पुस्तक लौटा दो, अब क्या काम की है, जब तुमने जो पुस्तक लिखी है वो तो जानता हूं मैं कि तुम्हारी पुस्तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि मेरा मित्र दुखी हो गया क्योंकि मैंने न्याय के ऊपर पुस्तक लिखी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो पुस्तक किसी को अब तक दिखाई भी नहीं थी, और स्वयं की लिखी हुई पुस्तक चैतन्य महाप्रभु ने गंगा में छोड़ दी, जो एक ही उसकी कॉपी थी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम दुखी हो रहे हो मेरे इस न्याय की पुस्तक को लिखने से, तो मुझे ये न्याय की पुस्तक नहीं चाहिए, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो ये इतना ज्यादा ये प्रभावित हुआ चैतन्य महाप्रभु की इस नम्रता को देखकर कि वास्तविक रूप में ये व्यक्ति के अंदर कोई स्पर्धा करने की वृत्ति नहीं है, वास्तविक रूप में ये नम्र है। तो हनुमान जी यही सोच रहे थे कि मैं यहां पर स्पर्धा करने नहीं आया सुरसा से, मैं यहां पर केवल सीता को प्राप्त करने के लिए आया हूं, इसलिए नम्र बन जाऊं। तो प्रबोधानंद सरस्वती वो कहते हैं कि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोगों के सामने अपने दांतों में तृण रखकर जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आप बहुत प्रगत व्यक्ति हैं और आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप यह हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए। और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र को अपना लेंगे अपने जीवन में, तब फिर उनको कह सकते हैं कि जो कुछ आप कर रहे थे वो सब कुछ आपको अधोगति की तरफ ले जा रहा था। परंतु यदि आपको भक्ति देनी है उन्हें, तो अपने दांतों के बीच में तृण रखकर और घुटनों के बल याचना कर उनको कहना चाहिए कि भगवान की भक्ति अपनाइए, या हरे कृष्ण महामंत्र अपनाइए। तो यहां पर हनुमान जी वही नम्रता दिखा रहे हैं सुरसा के सामने। तो ये जो दूसरा अनर्थ है अहंकार का, इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो नम्रता से। और आगे दो और अनर्थ आते हैं, एक का नाम है सिंहिका और चौथी है लंकिनी। तो ये दो अनर्थ कौन से हैं और कैसे हनुमान जी ने इनके ऊपर विजय प्राप्त की, इसकी चर्चा हम करेंगे आज शाम को। बोलो बजरंगबली हनुमान जी की, बोलो सियावर रामचंद्र जी की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।